نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 197 آیت نمبر 1-15 سورة العنکبوت لیسن نمبر 197 آیت نمبر 1-15 سورة العنکبوت لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات سورت کے بارے میں کریں گے سورۃ عنکبوت ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر کی سورت ہے 29 گویا کہ اس سے پہلے 28 طویل سورتیں ہم پڑھ چکے سورت کا نام العنکبوت اسی سورت کی آیت نمبر 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت سے ہے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس سورت کے اندر 69 آیات ہیں اور 989 کلمات ہیں 4165 حروف ہیں یہ ساری سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کہ یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو بات کی گئی اس میں مسلمانوں کو ایک طرف تو تسلیاں دی گئیں کہ کوئی بات نہیں کیا ہو گیا اگر اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آ رہی ہے یہ وقت ایسا نہیں رہے گا ہمیشہ اور دوسری طرف مسلمانوں میں سے کچھ کمزور پڑنے والوں کو ڈانٹا بھی گیا مکی دور تھا اسلام کی دعوت شروع ہوئی شروع میں مکہ والوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان کو لگا یہ چند لوگوں کی باتیں ہیں جب جوش ٹھنڈا ہوگا تو ہوش میں آ جائیں گے اور پھر ہمیں ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ جوش ٹھنڈا نہیں ہو رہا بلکہ گرم ہو رہا زیادہ اسلام کی دعوت کھلے عام پھیلتی جا رہی ہے پھر خوف پیدا ہوا تو انہوں نے مختلف قسم کی اذیتیں دینا شروع کر دی کبھی جسمانی کبھی ذہنی کبھی اخلاقی کبھی روحانی ہر تکلیف کے بعد اسلام اور ہی پھیلتا گیا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے ستانا شروع کر دیا کہ اسلام لانے کا مطلب کیا تھا آزمائش تنقید ایسے حالات میں پھر کچھ لوگ جب تھوڑا سا صبر چھوڑتے ہوئے دکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کی رہنمائی فرمائی اب اس صورت کو اور خاص طور پہ مکی صورتوں کے وہ حصے جن میں سے ہم اس طرح کی کہانیاں اور حالات سنتے ہیں پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے ہم میں سے کچھ لوگ قرآن اس طرح کا پڑھ رہے ہیں کہ اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں ان کو ساری انفارمیشنز مل جائیں گی ساری معلومات مل جائیں گی حالات سمجھ آئیں گے لیکن وہ ایک کہانی سمجھ کر سننے والے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اپنے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے اس کو سننا یہاں پھر گھر جا کے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے ترجمہ یاد کرنا ایسا سننے والا ان آیات کو سمجھ تو جائے گا لیکن کچھ لوگ جو قرآن کے اس سفر میں عملی کشمکش کا شکار ہیں ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں کبھی ایک کا منہ بگڑتا ہے تو کبھی دوسرے کا کبھی ایک مشکل ہے تو کوئی دوسری تو وہ لوگ واقعی اس صورت میں سے بہت کچھ عملی طور پر لیں گے عملی رہنمائی ملے گی جیسے چینی کا سب کو معلوم ہے کہ میٹھی ہوتی ہے لیکن چینی کو چکھنے والا ہی اس کی مٹھاس کو فیل کرتا ہے کہ میٹھا کتنا ہے تو ایسی صورتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ سوچنے پہ مائل کرتی ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آیات ٹوسٹ کریں گی جیسے کبھی چٹیا بنتے ہیں نا تو مختلف بل ہوتے ہیں تین لڑیاں آپ ڈالتے ہیں ایک اوپر آ جاتی ہے دوسری نیچے ایک اوپر اسی طرح اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں موٹیویشن دیا جا رہا ہے کچھ آیات ایسی ہوں گی کہ جس میں کفار کے شر کو کھولا جائے گا خاص طور پہ جو انہوں نے اس دور میں کھولا ہوا تھا بتوں کے اوپر مان تھا خانہ کعبہ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے نیک سمجھتے تھے جنہوں نے چند ریچولز کو ہی دین کا کل بنا لیا تھا اس کی بات ہوگی اور ساتھ ہی تیسری چٹیا آ جائے گی مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈانٹنے کا انداز ہوگا شعور دلایا جائے گا ان کو نعمت کی قدر دلائی جائے گی کہ کیا ہوا اگر اسلام کے راستے میں مشکل آ رہی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ تم اس کی لذت کو پاؤ گے اور ایسی ہی ڈانٹ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے کیا حسب الناس یترکوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اور سورت کے بالکل آخر میں عنکبوت یعنی مکڑے کی مثال دے کر کفر کی ناپائیداری کا احساس دلایا گیا کہ جیسے دور سے اتنا بڑا نیٹ دکھتا ہے لیکن پھونک مارو توڑ جاتا ہے. اسی طرح آج اسلام کے خلاف باتیں, پروپیگنڈے, محاذ, یہ ساری چیزیں کتنی ہی عام کیوں نہ ہوں لیکن صرف وہ منہ چاہیے جہاں سے اتنی زبردست پھونک نکلے کہ کفر کے جالے جو ہیں وہ یوں مٹ جائیں جیسے کہ مکڑی کا جالہ مٹتا ہے. تو آئیے اس صورت کو دور حاضر میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق رہنے کے لیے کیا خدائی ہدایات ہیں اس نظر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اکثر مکی صورتوں کا انداز اسی طرح سے ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سوال سے آیت شروع ہوتی ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت سوال سے شروع ہوتی ہے. یہ جو آ کا لفظ ہے نا, یہ حمزہ استفہامیہ ہے, انکار کے لیے ہے. یہاں حسبہ احتساب, گمان, لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف یہ کہنے پر کہ لا الہ الا اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کو ہم بالکل عام زبان میں بات کریں, دنیاوی لحاظ سے تو کیا ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف رجسٹریشن فارم فل کرنے پہ ان کو ڈگری مل جائے گی؟ کیا لوگوں نے یہ سوچا کہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے ہی ان کو میڈیکل کی ڈگری مل جائے گی؟ ملتی ہے دنیا میں, تو پھر اسلام کی ڈگری کیسے؟ یہی انداز سورت بقرہ کی آیت 214 میں بھی تھا, 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں پر گزر چکے؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ الا ان نصر اللہ قریب. جان لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ مومنوں کے. اسی طرح سورت آل عمران کی آیت 142 میں غزوہ احد کے تناظر میں بھی یہی پیغام دیا گیا. جب مسلمان ذرا ڈھیلے پڑے تو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جان لڑانے والے اور بہادری دکھانے والے کون ہیں؟ اسی طرح سورت توبہ کی آیت 16, سورت محمد آیت 31 میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرتے ہیں. اس آیت کے ساتھ ایک واقعہ بھی آتا ہے. حضرت حباب بن عرت رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ اللہ کے نبی کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اور کمر کے اوپر اتنی چوٹیں تھیں کہ جو ان کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی گئی تھیں. کہنے کہ اللہ کے نبی آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے کہ حالات بدلیں؟ کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا جوش اور جذبے کے ساتھ, اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اسلام کی وجہ سے اتنا آزمایا گیا کہ کسی کو زمین کھود کر گڑھوں میں ڈال کر بٹھا دیا جاتا اور ان کے سر پر آرا ڈالا جاتا, آرے کے ذریعے ان کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا, کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں, لیکن خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے خزر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। मुख्तलिफ रिवायात से ये चीज़ हमें सही बुखारी, अबू दाऊद और नसाई में मिलती है। किसको कहा जा रहा है कि तुम जल्दी करते हो? जिन्होंने अपना जिस्म जख्मी करवा रखा था, चूर चूर कर चुके थे अपने आप को इस्लाम की कीमत देते हुए, और अल्लाह ताला का नबी उनकी इस बात पे गुस्सा करते हुए दिखते हैं कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि इम्तिहान के बगैर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? क्या इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे? अपने बच्चों से कहो कि क्या इम्तिहान के बगैर तुम्हें किसी जगह ऑफिसर लगा दिया जाए? इम्तिहान तो खरे और खोटे का फर्क बताने के लिए होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला अपनी इस सुन्नत को अगली आयत में बयान करते हैं। ये मजमून पूरी सूरत में चलता रहेगा, इसलिए सिर्फ इस एक आयत पे ये बात करने की बजाय हम अगली आयत को साथ ले लेके एंड तक चलेंगे कि इस्लाम की कीमत क्या है। फरमाया वलकत फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और बेशक हमने आजमाया था इन लोगों को जो इनसे पहले गुजरे। कौन लोग हैं इधर? पिछले अम्बिया कराम की कौमें। फिर क्या हुआ? फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदकू वलयालमन्नल्काज़िबीन। बस अल्लाह ताला ज़रूर देखेगा उनको जो दावे ईमान में सच्चे थे, और ज़रूर देखेगा ईमान के झूठे दावेदारों को। ये अल्लाह का देखना क्या है? प्रूफ करने के मानों में है, नो के मानों में नहीं है। यानी इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है टू नो, जानना। ये तो अल्लाह को पहले ही पता था, उसने अपने इल्म अज़ली से ये बात लिख रखी थी कि कौन लोग इस वक्त चलेंगे और कौन हटेंगे, कौन पीछे होंगे, कौन आगे बढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला दूसरों के सामने इस बात को प्रूव करना चाहता था कि कौन लोग जो हैं वो चल पड़ेंगे और कौन नहीं चलेंगे, वरना तो कोई कल माने ही ना। अगर इस्लाम की कुर्बानियां ना देनी पड़ें और ऐसे ही लोगों को साबित करवा दिया जाए, कल हर एक कहेगा। तो एक आरामदेह माहौल में बैठ के ये कहना कि जी हम इस्लाम के लिए सब कुछ करेंगे, ये कोई अहमियत नहीं रखता, जब तक कि फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदकू, ये कोई नया मामला नहीं जो आज तुम्हें दरपेश आया। तारीख में हमेशा ऐसा हुआ, आज लोग दीन की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए, और अल्लाह के नबी के दौर में तो लोगों के ऊपर मुश्किल किस्म के हालात थे। जो गरीब या गुलाम होता उसको बुरी तरह मारा पीटा जाता, सख्त नाकाबले बर्दाश्त किस्म की अजियतें दी जाती। कोई दुकानदार या कारीगर होता तो उसकी रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते, सोशल बायकॉट किया जाता, यहाँ तक कि भूखों मरने की नौबत आती। इसी तरह तीसरी किस्म के लोग होते थे, बासर खानदान के लोग। उनका हाल तो ये था कि उनकी जिंदगी अजीरन कर देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही लोगों में से थे। आपको मालूम है कि हजरत उमर इस्लाम से पहले दियत के फैसले करते थे। कितना सेंसिटिव इशू है, ब्लड मनी किसकी लेनी। आज के दौर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जजमेंट का दौर था। इस्लाम आया, मुसलमान हुए, सब छूट गया, नहीं पलटे। क्यों? इसलिए कि जो हक के लिए आता है वो कोई चीज़ रहे या ना रहे उसको परवाह ही नहीं होती। वो कहता है जो जाता है जाए, फिर इज्जत जाती है जाए, माल जाता है जाए, रिश्तेदार जाते हैं जाए, फायदे नहीं मिलते नहीं मिलते, नहीं तो ना ऐसे। ये इस्तकामत है। अब आप देखेंगे कि बहुत आयतें आएंगी अगले 10 पारों में इस्तकामत की। क्या असल वैल्यू मुस्तकीम की होती है? पहले दिन कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और आखिर तक आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों से पूछ रहा है कि कितने पक्के हुए हो। आप कहते हैं कि असल देखना है कि चीज़ पायदार कितनी है, कीमत को छोड़ो, थोड़ी ज़्यादा दे के ले आना महंगा टेबल क्योंकि ज़रा मजबूत होगा। कुर्सी लेनी है मजबूत लेना, कीमत देनी पड़ी दे देंगे। अल्लाह ताला भी कुरान के इस मरहले पे पहुंचा कर हम सबको एक मैसेज देते हैं कि तुमने कुरान पढ़ लिया, तुम बहुत कीमती हो गए, लेकिन तुम्हारी असल वैल्यू तुम्हारी इस्तकामत से होगी। जो इस्तकामत नहीं रखता वो खो देता है। कपड़ा कितना ही हसीन क्यों ना हो, पानी में डालते ही उसका रंग निकल जाए तो आप उसको मासी को दे देंगे, और अगर वो भी पहन ले तो। इसी तरह कुरान का रंग अगर बंदे के ऊपर ना चढ़े तो बंदे को फ़ायदा नहीं होता, इससे पूरा फ़ायदा ले नहीं सकता। अल्लाह ताला कहते हैं ये नया मामला नहीं, ये हर एक के साथ होगा। मामूली हालात में गैर मामूली लोगों की सलाहियतों का पता ही नहीं चलता। सवाल पैदा होता है ना कि इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? इसलिए कि खरे और खोटे का फर्क पता चल जाए। ये अल्लाह की सुन्नत है जो कल भी थी, आज भी है, आखिर तक रहेगी। अल्लाह ताला अपने इल्म को लोगों के तजुर्बात में ढाल कर लोगों को दिखाता है कि ये सच्चे लोग थे, ये झूठे लोग नहीं थे। ये सिर्फ बातें नहीं करते थे, ये गरजते ही नहीं थे, बरसते भी हैं। ये सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं, किरदार के गाजी भी थे। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तारीख अपनी कमरों पर रकम करवाई। ये आजमाइशों की भट्टी में डाले गए, तपाए गए ताकि खोट दूर हो। अब देखिए कि सोना जब मिलता है ना तो रेत में मिला हुआ होता है, पता नहीं चलता कि सोने के जर्रे कौन से हैं, रेत के कौन से हैं। उसके बाद एक कसौटी में डालते हैं। ये जो हमारे यहाँ बहुत मारूफ लफ्ज है ना, कसौटी, कसौटी उस पैमाने को कहते हैं जिसमें रेत मिला सोना डाला जाता है। फिर उसमें से छट छट के सोना निकलता है और रेत अलग है। अब सोने के साथ कुछ रेत आ गई, कोई बात नहीं, रेत गई जाए, सोना ना जाए। अल्लाह ताला भी इसी तरह लोगों को परखते हैं। हम रेत पे मिले हुए लोग होते हैं, दुनिया दनी के पीछे, अदना दुनिया के पीछे। सूरत अलकसस की आखिरी आयतों ने यही पैगाम दिया था कि बतर को छोड़ो, रियाकारी को छोड़ो, आगे जाने को याद रखो। अल्लाह ताला मट्टी मिले सोने में से सोने को निकालना चाहता है। और ये कुरान सीखने के जो मरहले हैं ना, असल में ये हमारा खोट और हमारा खरापन जाहिर कर रहे हैं। जुबान चलाना क्या मुश्किल है, आप लोगों से राह चलते बात करें, कुरान पढ़ा रहे हैं, क्लास आप आइए थी इंशाल्लाह, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि ये सिर्फ जुबान की नोकी है। अभी तक खलक तक भी ये बात नहीं गई कि हाँ आएंगे। कह दिया, वादा कर दिया, थैंक यू कह के फ्लायर ले लिया, बाज आके फ्लायर फॉर्म फिल भी कर जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता हमने क्या किया है, ऐसे जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन जो हर दिन के इम्तिहान के बाद साबित करता है कि अल्लाह हम हैं वो लोग जो सोना बनने के काबिल है, ऐसे लोगों को ऊपर रखता है। अल्लाह का दीन इंतहाई कीमती और इंतहाई फ्रेजल चीज़ है। अल्लाह ताला किसी के हाथ में देने से पहले चेक करता है कि क्या ये हाथ इसको संभाल लेंगे, क्या इसका वजन, इसका बोझ उठा लेंगे, खयानत तो नहीं कर देंगे। इसलिए अल्लाह ताला पहले ऐसे लोगों को तैयार करता है जो उसके दीन का बोझ सहार सके। देखिए, हर बंदा जो दीन से या कुरान से हटता है ना, वो मुनाफिक नहीं होता। ये लिख लें बात, मत सोचें। मिसाल है कि अगर आपके साथ पहले पारे से कुछ लोग थे और आज नहीं दिख रहे, तो नऊज़ु बिल्लाह सारे मुनाफिक छट गए। या आपके साथ मदद करने वालों में कुछ थे और आज नहीं है, या मजबूरी के बगैर या मजबूरी से चले गए तो मुनाफिक थे। नहीं, ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, मत सोचिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन दर्जों का फ़र्क होता है। मसलन आप देखिए कि किसी अच्छे स्टोर से आप चीज़ ख़रीदते हैं ना, आपको सब आलू एक साइज़ के मिलेंगे। उनके स्टोर का एक क्राइटेरियन है कि वो एक ख़ास साइज़ से छोटा आलू नहीं बेचते, या एक बड़ा एक छोटा नहीं बेचते। आपने इन मुल्कों में ये चीज़ देखी होगी, अगर बड़े हैं तो अलग कीमत के हैं, छोटे हैं तो अलग हैं। हमारे मुल्कों में दोनों तरह के चलते हैं अक्सर। ये स्टैंडर्ड कॉन्शियस होना होता है। अल्लाह की ज़ात, इस किताब और इस दीन का बोझ बहुत आला स्टैंडर्ड के लोगों पर डालना चाहता है। कुछ लोग वो कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। बस आप देखिए ना कि आप यहाँ बैठते हैं, आप क्यों आगे बैठते हुए डरते हैं कि अगली कुर्सियाँ ख़राब हैं? नहीं, लेकिन आपको खौफ क्या होता है कि हम हिलेंगे, आवाज़ आएगी, हम कुछ खाना चाहते हैं छुपके खा लेंगे, सामने नहीं खा सकते, हम ये कर सकते हैं, हम उस्ताद की नज़रों में आ जाएंगे, तो आप पीछे चले जाते हैं ना। इसी तरह हर बंदा अल्लाह के दीन के तकाजे नहीं निभा सकता, फिर अल्लाह ताला उस पर रहम खाते हुए उसको पीछे कर देते हैं। चलो जाओ फिर तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ के अपने घर बार की फ़िक्र करो। और फिर ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस मेज़ को आप कर दें शीशे का, सारे पेच इसके निकाल दें, और मुझे आप कहें कि मैं अपना लैपटॉप इस पे रखूं, मैं तो कभी ना रखूं। ये नहीं कि लैपटॉप कीमती है और उस तरह का नहीं मिल जाएगा, उसमें मेरा बड़ा कीमती मवाद है, मैं नहीं दे सकती, सॉरी, मैं अपनी गोद में रख लूँगी, मैं हाथ में रख लूँगी, मैं आपको नहीं दूँगी कि इस कच्चे मेज़ पर आप रखें। अल्लाह कच्चे लोगों को अपना दीन नहीं देता। और याद रखें, सूरत हिजर में जब हमने आयत पढ़ी थी ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने ये ज़िक्र यानी कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ये बात उसकी दलील है। अल्लाह ने इतनी सख्त सिक्योरिटी लगाई हुई है इस किताब के बारे में कि जिनको देता है उनको भी खूब छान फटक के देखता है। कभी आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि जो मशीनें होती हैं जिनमें से लोग गुजरते हैं, सिक्योरिटी के लोग भी उससे गुजरते हैं, अमले के लोग भी गुजरते हैं, एयर होस्टेसों के भी बैग चेक होते हैं, इवन पायलट्स को भी उन्हीं स्कैनर्स में से गुजारा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी इशू। तो ये सिक्योरिटी इशू है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब छान पटक लेता है कि किसी लम्हे में तुम मेरे दीन को छोड़ तो नहीं दोगे। और जो बुनियादों में मोटा ताज़ा आप देखें कि पत्थर डाल देते हैं ना, फिर वो बहुत बड़ी मंजिलों को भी बर्दाश्त कर लेता है। मुझे हैरत होती है जब मैं ऊंची ऊंची इमारतें देखती हूँ, 20 मंजिल, 30, अब तो खैर 100-100 मंजिलें, तो मेरा दिल चाहता है कि कोई इस इमारत की तह में जाके मुझे दिखाए कि इसकी बेस कितनी मोटी है। मैंने जो चीज़ सुनी है कि ये आर्किटेक्चर्स को पता होता है कि जितनी हाइट पे उनको लेके जाना होता है ना, उसका बैलेंस रखने के लिए उतना नीचे लेके जाते हैं, पूरी तो उतनी नहीं खोदते, लेकिन एक खास एंगल है, मतलब नीचे इतना है ना तो ऊपर उससे डबल हो जाएगी। अगर मिसाल है कोई 100 फुट ऊंची इमारत बननी है ना, तो नीचे हो सकता है कि 20 से 25 फुट या उससे भी ज्यादा की गहराई खोदनी पड़ेगी। फिर एक फिगर जो मुझे इस दफा पता चला अपने किसी एक ट्रिप में, उन्होंने बताया कि आपको पता है कि ये इमारतें जो लंबी बनती हैं 100-100 फुट टॉल या उससे ऊंची, तो ये सीधी नहीं बनती, यूं बनाते हैं, टेढ़ी बनती है, वरना अगर बिल्कुल सीधी हो तो ये गिर जाए। फिर एक और जो बड़ी खतरनाक बात, और मुझे बताई भी किसी ने उस वक्त जो मैं किसी एक घर के शायद 43rd फ्लोर पर खड़ी थी, मुझे लगा मेरी तो टांगें ही कांप जाएंगी। उन्होंने मुझे अपनी बालकनी में खड़े होकर कहा कि देखें वो इमारत है ना, कहने लगे ये हिलती हैं। एक खास फिगर जब आता है ना, मिसाल है कि ग्राउंड फ्लोर से का उसके ऊपर की जो फ्लोर्स बनते हैं ना, उसके अंदर कहते स्प्रिंग डालते हैं, यूं हिलती हैं, क्योंकि जब हवा चलती है अगर वो सीधी होंगी ना तो गिर जाएंगी, तो उसको फ्लेक्सिबल करते हैं यूं। खुद वो कहती है हमें खुद अपनी इमारत दिखती है, लेकिन उसका वो इक्विलिब्रियम कुछ इस किस्म का सेटल डाउन किया होता है कि फिर वो मतलब बिल्कुल टूट के अलग नहीं होती। ये किसको, एक इमारत को खड़ा करना है जिसमें चंद 100 लोग रहेंगे ना, अल्लाह का दीन। अब सिर्फ अल्लाह का दीन मैं कहती ना, तो मेरे यहाँ से उतर के ना दिल के अंदर ऐसे लहर उठती है, अल्लाह का दीन। कहें एटम बॉम्ब, आप कहें डायमंड, आप जो मर्जी नाम ले लें अपनी कीमती चीज़ों को, ये सब लफ्ज़ अल्लाह का दीन इसके मुकाबले में ऐसे ही है जैसे डायमंड के मुकाबले में कांच की कोई चीज़ बनी हुई, कुछ भी नहीं। आपने सफ़र करना हो, सोने की चूड़ियाँ हो सकता है आप बैग में डाल दें कहीं कर दें, लेकिन कांच की आप हाथ में थैले में पकड़ के लाएंगे। चीज़ें दो तरह से होती हैं, याद रखिए, एक कीमती और एक नाजुक। कुछ चीज़ें कीमती होती हैं, फ्रेजल नहीं होती, कोई बात नहीं डाल दो नहीं टूटेंगी। कुछ चीज़ें कीमती ना भी हो फ्रेजल ज़रूर होती हैं। लिखा होता है आप जब सामान देते हैं वो पूछते हैं इसमें टूटने वाली चीज़ें तो नहीं है, फिर ऊपर वो स्टैम्प्स लगा देते हैं कि इसको ज़रा आराम से फेंकें। अल्लाह का दीन कीमती भी है, इतना फ्रेजल है कि बुलबुले की तरह टूट जाता है, इसलिए कि अल्लाह अल्लतीफ़ है, अल्लाह बहुत बारीक बीन है। अल्लाह ताला अपने दीन को उठाने वाले हाथ ऐसे चाहता है कि जो ना सिर्फ मजबूत हो खुरदरे भी ना हो, क्योंकि खुरदरी चीज़ के हाथ में भी चीज़ आती है तो चमक ख़त्म हो जाती है। आप सोने की चूड़ियाँ अपने नगों वाली चीज़ों को खाली डबियों में भी नहीं रखते, फिर आप उसको फिर किसी कागज़ किसी फोम में डाल डाल के रखते हैं कि रगड़ भी ना आए, फ्रिक्शन ना हो। अल्लाह चाहते हैं कि कुछ सख्त मिजाज लोग ना मेरे दीन में आ जाएं, टेररिस्ट ना हों वो, एक्सट्रीमिस्ट ना हों। अल्लाह ऐसे लोगों को खूब परखता है। और आप देखें कि ये मुश्किलात की जो भट्टी है ना, ये बिल्कुल वही काम देती है जो जेवर बनने के बाद पॉलिशिंग होती है। पता है क्या होता है पॉलिश? रगड़ते हैं, घर बनते हैं, फर्श पड़ते हैं, फिर रगड़ाई होती है। रगड़ाई में क्या होता है? अंदर से चमक आती है, मार्बल की रगड़ाई होती है, और उसके बाद देखते कहते हैं ये वही है, कल तक मिट्टी का लग रहा था और आज नजर नहीं ठहर रही। अल्लाह इंसानों की रगड़ाई कराता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। अम हसीबल्लज़ीना यअमलूनस्सय्यिआति यस्बिकूना, क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? नहीं, साअमा यहकुमून, बड़ा ही बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं, बड़े गलत हुक्म लगा रहे हैं। यानी अल्लाह की ज़ात ऐसे लोगों को चैलेंज करती हुई इस आयत में दिख रही है। यहाँ आप देखिए आयत की वो दूसरी चुटिया बुनने लगी। पहली आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को डांटा, सख्ती की बात, क्या हो गया, कदर नहीं है इस नेमत की। ये तो रोते ही रहते हो, रोते ही रहते हो, शिकवे ही करते हो, गिले ही करते हो, अपने आंसू दो बाहर और चार अंदर डालते हो। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह तुम्हें कहाँ के लिए सिलेक्ट कर रहा है? थोड़ी सी डांट थी, फिर अगली आयत में तसल्ली दी, वलकद फतनल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी और थे, कोई पहली बात नहीं। इंसान जब ये सुनता है ना कि अच्छा कोई मेरे जैसा और भी है, तो फिर शुक्र करता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ, और भी हैं, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, दिस एंड दैट। अब तीसरी आयत में अल्लाह ताला कुफार की चुटिया को बुन रहे हैं। कुफार का हाल है अम हसीबल्लज़ीना, क्या अबू जहल ने ये सोचा, क्या उत्बा शैबा, क्या ये बड़े बड़े कुफर के सरदारों ने ये सोचा कि यस पे कूना हमसे आगे निकल जाएंगे, हमारे नबी को हरा देंगे, हमारे नाम पे निकलने वालों को मारेंगे। सा अमा याहकुमून, बहुत बुरे फैसले हैं जो ये कर रहे हैं। ये ऐसे काम करके अपने आप को खुशफहमियों की जन्नत में लेके जा रहे हैं। हमारा हाल ये कि हम अपने लोगों की मदद करते हैं। मत सोचो कि आज अगर मुसलमानों पे मुश्किल आते हैं तो इसका होता है कि उनका अल्लाह उनको नहीं जानता, वो देख भी रहा है, वो जानता भी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया, अभी पूरी चीज़ गली नहीं है, अभी अंदर का प्रोसेस चल रहा है। अल्लाह ताला अभी इनको पॉलिश कर रहा है। किसी को रहम आ जाए पॉलिश करते हुए देखकर किसी को, हाय ना इसको इतना मारो, हाय इसको यूं ना करो, मेरा सोना घिसेगा। आपको पता है कि जब आप गोल्ड लेते हैं ना, तो वो पॉलिश का कुछ वजन निकाल लेते हैं आपसे, क्यों? कहते हैं जब रगड़ाई की थी तो सोना झड़ गया था ऊपर से, वो भी आपके इनाम पर डाल देंगे। तो क्या अगर इस्लाम के रास्ते में हमारी कुछ खूबसूरतियाँ कम हो गई, कुछ हम अपने घरों को कम कर दिया, तो चमकेंगे भी तो बाद में हम ही। आज अगर आप कहते हैं कि पढ़ पढ़ के मारे गए, थक गए, हुसन ख़त्म हो गया, कल निखरेगा, कल मिलेगा वक्त, इन्हीं घरों में खैर आएगी। मैंने किसी को दावा दिया का नहीं, वो वक्त मेरे मियाँ के आने का है, वो वक्त सोने का, बच्चों के, मैंने बड़े यकीन वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा देखें आप जो सीखेंगे उसकी खैर आपके घर पे आएगी, आपके बच्चों को मिलेगी, आपके मियाँ को मिलेगी। कह रही ये तो ठीक है, यकीन ये है कि हमें खुद पता ही नहीं है।